आगे बहुत ही दिल को हिलाने वाली सूरत मुनाफिकून। 11 आयात है सिर्फ, लेकिन पढ़ते वक्त दिल बोझल होता है। आप कह लेते हैं कि निफाक के मौजू पर एक ऐसे है मजमून। कभी कभी सूरतों का जो नाम होता है ना, ज़रूरी नहीं होता कि उसमें वही बात हो। जैसे सूरह बकरा में बस एक वाक़या है गाय का, और बाकी आयतें आप देखिए मुख्तलिफ है ना। लेकिन ये वो सूरत है जिसमें पूरा टॉपिक ही निफाक है। और हमने सूरत बकरा के शुरू में मोमिनों, मुनाफिकों और कुफार का नाम पढ़ा था। यहाँ अब उस लेवल की दूसरी सूरत है। 18th पारे के शुरू में सूरत मोमिनून पढ़ ली हमने, आज सूरत मुनाफिकून है, और 30वें पारे में सूरत काफिरून है। आयत 1-8 क्या है? मर्ज़े निफाक की हकीकत और मदारिज। इसकी भी इन डेप्थ स्टडी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे लगता है कि काटो तो बदन में लहू नहीं, हर बात पे लगता है कि हमारे दिल में निफाक ना हो। साहबा तक भी अपने आप को निफाक से बरी नहीं समझते थे, और ये एक दिन में नहीं होता। याद रखिए, इसका नुक्ता आगाज झूठ है। झूठा लाइफस्टाइल, झूठी बातें, झूठी कस्में, झूठी मोहब्बतों के दावे, ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, और इसमें पूरा पीछे वाक़ है। आयत नंबर 5 से 8 में अगर आप देखें तो मर्ज़े निफाक की हकीकत और मदारिज में एक ऐसा वाक़या बयान किया गया है कि जिसको पढ़ने के बाद वाकई इंसान कांप के रहता है। नबी सल्लम के सामने, या आपके दौर में कह लीजिए कि आपके पीठ पीछे, अब्दुल्ला बिन उबई ने आपके बारे में ऐसे नाज़ेबा जुमले बोले थे कि बाद में उनके बेटे ने कहा कि आप जब तक ये लफ्ज़ वापस नहीं लेंगे मैं आपको मदीना में दाने नहीं दूंगा। ये गज़वा मुरैसी या गज़वा बनु मुस्तलक, दोनों एक ही नाम है, उसके वापसी पे ये सफ़र हुआ। और ये वही गज़वा है जिसमें हज़रत आयशा पे तोहमत भी लगी थी। फिर आगे मुनाफ़क़त का सबब बताया जा रहा है आयत 9 में, और वो क्या है? औलाद और माल की हद से बड़ी भी मोहब्बत। इलाज क्या है? इनफाक। लिख लीजिए, निफाक का इलाज इनफाक। बस एक अलिफ लगा लें, आई 10 से 11, जितना अल्लाह के रस्तों में आप दिल खोल के देंगे उतना इंशाल्लाह निफाक ख़त्म होगा। वैसे भी मुनाफिक का मसला ही तो खुबे दुनिया, माल और दुनिया की मोहब्बत, फिर इसीलिए इससे रोका गया। तो सूरत का एंड क्या है? वन फिकु मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लियातिया अहदकुमुल मौत। खर्च कर दो उसमें से जो तुमको दिया गया, यानी तुम्हारा अपना थोड़ी है, तुम्हें दिया गया है, इससे पहले कि आ जाए तुम्हारे पास मौत किसी के पास। फ़यकूल रब्बी लौला अख़्तरतनी इला अजलिन क़रीब। फिर वो कहते हैं, रब क्यों नहीं मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दी, फिर मैं सदका करता और मैं नेक बनता। देखिए, दो ख्वाहिशें हैं। ये नहीं कह रहा कि मैं ज़रा ईद के कपड़े पहन लूँ, अच्छा बेटी की शादी कर रहा हूँ, ना ना। फ़सद्दका, तिजोरी भरी हुई है, बैंक में लंबी चौड़ी स्टेटमेंट्स हैं, थोड़ा सा टाइम दो मैं सदका करूँ, क्योंकि मरते ही वो देख लेते हैं ना कि अब मुझे यहाँ कितने माल की ज़रूरत है। देखिए, कभी बंदे का घर में बहुत कुछ होता है, सफ़र में बड़ा लिमिटेड होता है, तो क्या दिल करता है? ज़रा सा मौका मिले तो मैं जाके घर से ये चीज़ भी ले आऊँ, ये भी ले आऊँ। दुनिया से जाते वक्त यही एहसास होगा। फिर उसके बाद, वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जा अजलुहा। अल्लाह हरगिज़ मोहलत नहीं देता किसी नफ्स को जब उसकी अजल यानी उसकी मौत आ जाती है या उसका वक्त आ जाता है, और अल्लाह हर चीज़ को जानता है। तो करें क्या? इस दुनिया के माल को इधर ही बोझ हल्का कर दें। देखिए, सामान सफ़र में उठाया हो तो अच्छा लगता है, सफ़र बहुत मज़े की चीज़ है, शर्त है कि आप खाली आते हो। तो ये दुनिया की चीज़ें इधर ही समेट के इधर ही लगा दीजिए ताकि आगे हिसाब भी आसान हो। फिर इसके बाद आगे सूरह तगाबुन है, क़यामत के नामों में से एक नाम है, और गबन होगा, धोखे है उस दिन। टोटल 18 आयात है इसमें। पहली 4 आयात 1-4 में ईमान बिल्ला है, क्योंकि अब अल्लाह पर ईमान की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है, और इसमें तस्बीहात के साथ साथ अल्लाह ताला के कायनात को पैदा करने और इंसान की तख्लीक की बात है। फिर आयत नंबर 5 और 7 में क्या है कि साबिका कौमें रसूलों पर ईमान क्यों न लाई। रसूल तो अपने वक्त की बयीना होता है, रोशन दलील होता है, लेकिन लोग क्यों नहीं मानते? उसकी वजह है, और वो क्या है कि उनकी आंखों से पर्दा नहीं हटा हुआ, अभी उन्होंने आखिरत को देखा नहीं होता। उनको रसूल का मुकाम नहीं पता होता कि ये कितनी बड़ी शख्सियत है जो अल्लाह ने हमारे पास भेज दी। और फिर आयत नंबर 8-10, हार और जीत का असल दिन, ये है असल में इस पूरी सूरत का पिन पॉइंट। ज़ालिका यौमुत तगाबुन, उस दिन गबन होगा कैसे होगा? ज़रा सा इसको समझिएगा। मोमिन और काफिर के गबन का दिन है, खसारे का दिन। काफिर का खसारा ईमान छोड़ने की वजह से होगा, उस दिन पता चलेगा कि मैं तो धोखा खा गया। मोमिन का खसारा एहसान में कमी करने की वजह से होगा कि मैं कुछ ज़रा और भी अच्छा काम कर लेता। मैंने क्यों नहीं एहसान के दर्जे की नेकियां की? मैंने चल चलाओ की नेकियां क्यों की? गरज के हर शख्स पछताएगा कि कुछ और अमल लेकर आ जाता। क्यामत के दिन इंसान अपने अमाल को हकीर जानेगा। वो जगह जहाँ अल्लाह का नाम लिया वो तो अच्छा है, लेकिन जिसको बग़ैर अल्लाह के नाम के किसी महफिल से उठ गया तो वो महफिल हसरत का ज़रिया बनेगी। और एक बहुत बड़ा धोखा आपको पता है क्या होगा? बहुत सारे लोग सोचेंगे आज फर्स्ट आऊँगा, लोग भी कहेंगे ये तो फर्स्ट आएंगी देखना, और पता चला कि वो पासिंग मार्क्स भी पूरे नहीं आए। और एक और धोखा भी होगा, बीवी बच्चे नेकियां खा जाएंगे। ये बातें बहुत ही, लेकिन घर वालों को अच्छे बुरे पे नहीं रोका टोका, और ऑपोजिट भी हो सकता है। अल्लाह हमें उस दिन की रसवाई से बचा दे। फिर इसके बाद आयत 11 से 13 में मुश्किलात में दिल का जमना ईमान की निशानी है। ये बड़ी अहम बात है। आप इस आयत पे गौर करेंगे ना तो आपका दिल करेगा कि कुछ और मेरे पास ज़्यादा हो ना हो, कपड़े जूते जेवर पैसे खाना घर बड़ा, हाँ ईमान ज़्यादा हो, क्योंकि हम में से हर एक मुश्किल वक्त में परेशान हो जाता है। पैसा देकर भी कभी कभी मुश्किलात नहीं टलती, ईमान दे दीजिए आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। मा असाबा मिन मुसीबत इल्ला बिइज़्निल्लाह, तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचती है वो अल्लाह के हुक्म से पहुंचती है। वमई युमिन बिल्लाह यहदी कल्बा, ये टुकड़ा याद कर लें। जो अल्लाह पर ईमान लाएगा उसका दिल उसको हिदायत देगा, उसका दिल उसको गाइड करेगा। तो ईमान एक टार्च बन के मुश्किलात में जीने का रास्ता सिखाता है। वो लम्हे जिसमें लोग खुदकुशी करने का सोच रहे होते हैं, सुसाइड या दूसरों को मार दूँ या खुद मर जाऊँ, आपका ईमान आपको जीने की एक खूबसूरत तमन्ना देता है। फिर आगे ख़ानदान और माल की आजमाइश का तذکرہ है, आयत 14 और 15 में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़्वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वुल लकुम, तुम्हारे अज़्वाज यानी स्पाउसेस और तुम्हारी औलादें तुम्हारे दुश्मन हैं। कौन से? हर एक। क्या आज जाकर अपने बीवी बच्चों को ये सुनाने लग जाएं, शौहर को जाकर आप ये जुमला बोलेंगे? नहीं, वो औलादें और वो स्पाउसेस जो गुनाह पे माइल करें या नेकियों से रोकें। अब हर एक अपना मुहासबा खुद कर ले, और फिर दुश्मन है तो क्या उनको मारो? नहीं, ताफू व तस्फहू व तगफिरू, तीन लफ्ज़ डिक्शनरी में आते हैं माफ़ी पे, तीनों इधर इकट्ठे हैं। घरों में मुकाबलेबाजी नहीं चलती, घर ऐसे नहीं चलते, तुर्की बतुर्की जवाब नहीं दिया जाता। मियाँ साहब को मुनाफिक नहीं कह सकती हैं आप, बेगम को आप मुशरिक नहीं कह सकते। घर में प्यार मोहब्बत का माहौल रखिए, वरना आपका घर जहन्नुम बन जाएगा। और इन नमाम का औलादुकुम फितना, है तो ये आजमाइश। तो लिखिए हर औलाद इम्तिहान का पर्चा, और हर नेमत माल की सूरत में है या किसी और चीज़ में है, ये इम्तिहान है कि तुम इसको यूज़ कैसे करते हो। फिर आयत 16 से 18 में दावते अमल है, क्या? फ़त्तकुल्लाह मस्तताअतुम, आप और मैं इस दुनिया से यही लेके जा सकते हैं। अल्लाह से उतना डर लीजिए जितनी इस्तताअत है। गौर से सुनिए भी और बाकी चीज़ों को भी लेकर चलिए, और बेहतरीन तरीके से इन मामलात को लेकर चलें। आगे सूरत तलाक है, 12 आयते हैं टोटल। इसमें देखिए कि औरत और मर्द के मामले को इतनी अहमियत मिली कि दूसरे पारे का तकरीबन आखिरी जो रुब था ना, उसमें तलाक, इद्दत और इस तरह की चीज़ें थी। और यहाँ क्या है, पूरी सूरत तलाक है। इसको निसाए सुगरा भी कहते हैं, निसाए सुगरा, छोटी सूरत। पहली 3 आयात में इद्दत शौहर के घर में पूरी की जाएगी, इसका तस्करा है। या अय्युहन नबी इज़ा तल्लक्तुमुन्निसा फतल्लिकूहुन्न लिद्दतिहिन्न वाग्सुलिद्दा। और फिर मैं वही जुमला बोल दूं जो आपको भूल गया होगा, दूसरे बारे में बोला था, आज हमें ना शादी करनी आती है सुन्नत और कुरान के मुताबिक, और ना तलाक देनी आती है। सिर्फ कुरान से तलाक देने का तरीका भी लोग सीख लेना तो कितने घर उनके बच जाएं। और इसमें जो जुमला है वो बड़ा प्यारा है, वमै यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, तकवा के फवायद। नंबर एक, मुश्किलात से निकलने का रास्ता अल्लाह का डर है, तकवा है। अल्लाह ताला इस शख्स के लिए आग से निकाल कर जन्नत में जाने का रास्ता बना देंगे और हर उस जगह से रास्ता देंगे जो लोगों पर तंग हो जाता है। तकवा के फ़वाद अगर आपको पता चले ना, तो आप मेरा लिए सबसे ज़्यादा इसकी फ़िक्र करें। चौथा फ़ायदा क्या है कि अल्लाह इसे दुनिया और आखरत में हर तकलीफ़ से निजात देगा। अल्लाह ने इसे जो रिस्क दिया है इस पर मुतमईन कर देगा और इंसान के दिल में तंगी नहीं रहेगी। तो तकवा एक कुंजी है रिस्क की, एक बड़ी प्यारी किताब है रिस्क की कुंजियाँ, आप भी हासिल करें। मीडियम साइज़ की बुक है, डॉक्टर फजल अली साहब की लिखी हुई है, हमने उसको पूरा पढ़ा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। कोरोना का जो साल था, आई थिंक 2020 वाला था, 2020, तो उसके जो प्रेप सेमेस्टर थे रमज़ान के, ज़ादुल खैर, उसमें हमने ये बुक भी पढ़ी थी। आप भी इससे फ़ायदा उठाएं और अपने मर्दों को बताइए कि कारोबार नहीं चल रहा, तो ज़रा जायज़ा लीजिए कि अल्लाह की नाफरमानी का कोई काम तो नहीं है ज़िंदगी में। फिर उसके बाद इद्दत की मुद्दत है आयत 4 से 5 में, ख़ास तौर पे कुछ हालात हैं। फिर आयत नंबर 6 to 7 में इद्दत के दौरान हुस्ने सलूक की बात हो रही है कि बीवियों को इद्दत के दौरान भी अच्छे हाल में रखो। हमारे यहाँ तो इद्दत से पहले ही औरत चली जाती है दूसरे घरों में। बहरहाल, हम तो इस पे क्या कहें, हमें तो इस पूरे टॉपिक को सीखने की ज़रूरत है। और आयत नंबर 8 to 10 में नाफरमानों का बुरा अंजाम है, पुरानी बस्तियाँ, पिछली बस्तियाँ, फजाकत वबाल अमरीहा, जो बुरे काम करके वो उसका अंजाम भुगत गए, तुम अपनी फिक्र कर लो। और फिर आयत 11 से 12, अंधेरों से रोशनी का सफ़र है, किताब की रोशनी में, कुरान की रोशनी में हिदायत के इस सफ़र को तय कर लो। फिर उसके बाद सूरत तहरीम आखिरी सूरत है पारे की, जिसके अंदर आपको फिर ख़वातीन से रेलेवेंट चीज़ें मिलेंगी। कुल 12 आयात है। नबी सल्लम के घर में एक ख़ास वाक़या पेश आया था, उसके ऊपर ये बेस सूरत है। पहली 2 आयात में शोहर के लिए कुछ हिदायात हैं और वो क्या है, किलीमा तो हर रिमुमा अहल्लाक। इस वक्त आपके मेरे से मुतल्लिक तो यही है कि जो अल्लाह ने हराम किया है या हलाल किया है, आप उसको हलाल या हराम नहीं कर सकते, और ख़ास तौर पे अपनी बीवियों की खुशी के लिए, यानी एक शौहर बीवी की खुशी के लिए और एक बीवी शौहर की खुशी के लिए हराम को हलाल नहीं कर सकती। आज कितनी बहनें हैं, जो आज जिक्र भी हुआ ना, इसीलिए बोल रही हूँ, प्लकिंग करती हैं मर्दों के नाम पर, बेपर्दगी करती हैं शौहर का नाम लेके और सो ऑन। हालांकि मैं नहीं मानती कि शौहर इतने क्यूरियस होते हैं। तो कभी भी अपने स्पाउस का नाम लेकर हलाल को हराम और हराम को हलाल ना कीजिए। फिर आयत 3 और 4 में बीवी के लिए हिदायत है। अल्लाह अपने नबी की बीवियों को कह रहे हैं कि देखो, तुमने अगर इस शख्स से कुछ छुपाया तो अल्लाह वही के ज़रिए इनको ये बात बता देगा और नुकसान तुम्हारा ही होगा। फिर आयत 5 में नेक सीरत बीवी की खसूसियात हैं। अल्लाह करे कि जब आप अपने बेटों के लिए रिश्ते ढूंढने जाएं या कोई मर्द अपने लिए बीवी ढूंढे, तो क्राइटेरियन हुसन, जमाल और ख़ानदान और बिरादरी की बजाय ये होना चाहिए, मुस्लिमातिन, मोमिनातिन, कानितातिन, ताइबातिन, आबिदातिन, साइहातिन, सय्यिबातिन वअबकारा। कुंवारी है कि पहले से शादीशुदा, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, पहली लिस्ट पूरी करो और अल्लाह हमारा मियाद ठीक कर दे ताकि हमारे घर ठीक तरह से बसने लगें। और फिर बहुत ही मशहूर आयत है 6 to 7, बचाओ अपने आप को और घर वालों को आग से, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ये कैसे बचाना है, उनको दिखाइए कि ये काम जो कर रहे हैं उसके नतीजे में आग है। घर में आग लगने का डर हो तो हम कितने केयरफुल हो जाते हैं, मेन होल खुला है स्विच, तो हम बच्चे को उधर जाने ना दें। क्या हम अपने बच्चों की तरबियत इस एंगल पे कर रहे हैं, थोड़ा सा इस पे गौर करते हैं। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा में पहली चीज़ क्या है कि अपने और घर वालों के ईमान की फिक्र करो। फिर अगली बात क्या है कि गलत कामों से बचो जो आग की तरफ ले जाता है, हर वो काम से बचिए जो आग की तरफ ले जाते हैं। फिर अपने बच्चों की तरबियत की फिक्र करें और इससे बहुत कुछ ज़्यादा। आज इस सीख के ऊपर गौर की ज़रूरत है, पहले अपना ईमान फिर बच्चों का। हम कहते हैं बच्चे नेक हो जाएं, हम नहीं होते, बच्चे हाफिज़ बन जाएं, हम नहीं बनते। तो बच्चों की फ़िक्र से पहले अपनी फ़िक्र, और अगर पिछली ज़िंदगी में गलतियाँ हो गई तो तूबु इलल्लाहि तौबतन नसूहा, आयत 8 में अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लो। आगे पुल सरात की बातें की गई हैं कि वहाँ उनका नूर आगे आगे जाएगा और वो दुआ करेंगे, रब्बना तमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। तौबतुन नसूहा क्या होती है? सच्ची तौबा। कपड़े में जो पेवंद लगता है ना, पहले दौर में कपड़ा फट जाए या जल जाए तो ऊपर एक कपड़ा रख कर सीते थे, इस अमल को नासखा कहते हैं। नासिख लफ्ज़ भी इससे है, यानी गुनाहों से तुम्हारी रूह की जो धज्जियाँ उड़ गई हैं ना, उस पे तौबा के फाहे रख दो। फिर ज़ुबान से इस्तग़फ़ार करना नदामत के साथ, ये भी तौबा है। जिस्म के साथ गुनाहों से किनारा कश हो जाना, दोबारा गुनाह ना करने का अज़्म करना, अगर ये तीन चीज़ें बीच में आ गई तो तौबा पक्की है। हकूकुल इबाद से मुतल्लिक़ है तो उस बंदे से माफ़ी मांगना, फिर उसके हक अदा करना, और फिर पुल सरात पे जो नूर है उसको ज़रा सा महसूस कीजिए। वुजू के अज़ा उस दिन चमक रहे होंगे, किन के? जो मस्जिद की तरफ पैदल जाएगा। जमरात को कंकरियां मारने वाले के लिए हदीस में नूर की बिशारत है। हज उम्रे में सर मुंडवाने वाले के लिए खुशखबरी है हदीस में, यानी ये नूर को पूरा करने वाली बातें हैं। फिर सूरह कहफ की तिलावत करने के लिए नूर होगा वहाँ, सदका इंसान के लिए नूर बन जाएगा, और हदीस से पता चलता है कि वो शख्स जो अल्लाह के रास्ते में बूढ़ा हो गया उसके लिए भी नूर होगा, यानी पाकीज़ा जवानी और एंड पे बुढ़ापे तक नेक रहा। अल्लाह हमारे नूर को भी पूरा कर दे क़यामत के भी दिन और दुनिया में भी। फिर अहले बातल से सख्ती का हुक्म है आयत 9 में, जिसमें मुनाफिकीन के साथ कुफार का लफ्ज़ जोड़ के बता दिया कि निफाक बिलाखिर कुफर पे ले जाता है। और आखिर में फिर आयत 10 में और आगे उसमें नस्बत काम नहीं आएगी। दरबल्लाहु मसलन, यहाँ देखिए दो खवातीन हज़रत आसिया और हज़रत लूत की बीवी का तذکرہ है, ये शादीशुदा औरतें हैं। तो लिखिए, एक को शौहर मिला नबी, नहीं उससे चल सकी, जहन्नम रसीद हो गई। दूसरी फिरौन की ज़ौजियत में आ गई, लेकिन अल्लाह ने ईमान दे दिया, जन्नत मिल गई। और अब भी नीलिंदा का बैतन फिर जन्ना की ख्वाहिश है, इसीलिए फिर आगे आयत 11 से 12 में हज़रत आसिया शादीशुदा औरतों के लिए और मरियम कुंवारी लड़कियों के लिए मिसाल बनाकर पेश कर दी गई कि वह मरियम, वो पाकीज़ा बच्ची जिसको अल्लाह ने एक आजमाइश में डालकर ईसा जैसा बेटा दिया, तो आज की अनमेरिड बच्चियाँ अपनी इज्जत और इसमत की हिफाजत वैसे करें जैसे मरियम ने की। तो ये था पारा नंबर 28। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।